नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश के कोनों कोनों में और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ सर फिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा। हेलो सायरा।
Hello, Sir Firozi. Namaskar, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikramaga. And hasbe dastoor, hum laaye hain aapke liye a selection of news, our discussion segment, Dateline India, some reports from the different parts of the country. Kyunki bhai naam hai show ka Parikrama, so we'll have to be true to the spirit of the show and we'll explore what's happening in different parts of the country. And apart from that, we of course have business news, sports news, and we'll pay tributes to those personalities who either have their birthdays today or birth or death anniversaries. Well, all of that in the roughly next half an hour. Let's start with the headlines first. Voting for first phase of assembly elections underway in 24 constituencies of Jammu and Kashmir. 50.65% voter turnout recorded till 3 p.m.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए शोध एवं विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी जरूरी।
दिल्ली कोर्ट समन्स फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद इन लैंड फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग केस।
मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पूर्व के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
एंटन बैडमिंटन, मालविका बंसोर डिफीट्स वर्ल्ड नंबर 7 ग्रिगोरिया तेनजुंग इन फर्स्ट राउंड ऑफ वुमेन सिंगल्स एट चाइना ओपन 2024 इन चांगजू। And yes, now it's time for Dateline India, and a very interesting topic is there today, Sir Firozi, हमारे Dateline India में. We are going to discuss about a plant which is actually called green gold. Any guesses which plant are we talking about?
जी, मैं guess कर पा रही हूँ कि हम बात करेंगे bamboo यानी बांस की.
Absolutely, one of the most sustainable plants in the world. It requires minimal fertilizers or pesticides and grows extraordinary quickly. Which is almost sometimes up to 3 feet in a single day. And because of these reasons, bamboo is considered a low impact crop that doesn't damage the environment when it's harvested frequently. Every year on September 18, the world comes together to celebrate World Bamboo Day. Yes, today is World Bamboo Day. And this day is commemorated to increase awareness of the importance of the plant bamboo in sustainable development and its many advantages for global economy, the environment and communities.
जी सायरा, जैसा कि आपने बताया, हर साल 18 सितंबर के दिन विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद बांस की जरूरत और बांस के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले फायदों से लोगों को अवगत कराना है। सायरा, हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, किस तरह हम कम संसाधनों के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो बांस एक ऐसी चीज है जिसे उगाने से, जैसा आपने बताया, कि पर्यावरण पर कम असर पड़ता है और कई रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं कि बांस का जो एक टहनी या एक तना होता है उससे एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन निकल सकता है। और इसके अलावा बांस बाकी लकड़ियों के मुकाबले 35% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है।
यस, एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हम उसके बाद में अभी कुछ देर बाद बात भी करेंगे, इतने इन्यूमरेबल यूजेस हैं उसके, यू नो, वेरी फ्यू प्लांट्स। आई थिंक मेरे ख्याल से एक जहन में कोकोनट ही पहला एक
जिसका हर चीज इस्तेमाल
होती है। एंड सिमिलरली बैम्बू इज ऑल्सो देयर, एंड दैट्स व्हाई बैम्बू इज ऑफन नोन एज द वंडर प्लांट। इट्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स, फर्नीचर, फूड, textiles and environmental preservation. The World Bamboo Organization, or WBO, established World Bamboo Day in 2009 to raise awareness about bamboo's huge potential as an environmentally friendly resource on a worldwide scale.
और सारा, क्योंकि बैम्बू के हर हिस्से को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एशियाई देशों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। बैम्बू शूट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका इस्तेमाल खान पान में होता है और कई बार कई तरह की डिशेस की स्पेसिफिकली उन्हें बैम्बू शूट्स में ही पकाया जाता है। और भारत के कई हिस्सों में बांस का उत्पादन होता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और नागालैंड में बांस की खेती होती है और इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। बांस पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जैसा कि हमने चर्चा की कि बांस का जो एक तना होता है वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। उसके अलावा सायरा हेल्थ पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। बांस का इस्तेमाल हम करें तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। इनमें आप कोई भी न्यूट्रिएंट कह लीजिए वो सब मौजूद है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फाइबर हो, मिनरल हो। इसके अलावा बैम्बू शूट्स में लो फैट होता है, इन शूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन ए, B6, E, कैल्शियम जैसी चीजों से भरपूर होते हैं। इसके अलावा बैम्बू शूट्स खाने पर हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप जाहिर सी बात है बीमार कम पड़ेंगे। इसके अलावा बांस में पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसी चीजें होती हैं जिनसे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। वहीं कई बार हमें हमारा शरीर हैवी फील होता है तो हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी बांस बहुत काम आता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, और इसके अलावा सेल्स ग्रोथ में भी बांस से मदद मिलती है। और सायरा हम लोग अपनी स्किन की देखभाल के लिए कई तरह के सीरम्स इस्तेमाल करते हैं और काफी हद तक एक्सपेंसिव होते हैं वो सीरम्स, तो उसका भी एक सस्ता अल्टरनेटिव है बांस। बैम्बू शूट्स के सेवन से त्वचा की कसावट बढ़ती है, और इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर बैम्बू शूट्स में फाइबर होता है जिसके सेवन से हम लोग काफी वक्त तक हैवी मील जैसा हम लोग को फील होता है, हम फुलफिल फील करते हैं, और ऐसे में हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है।
एंड इनफैक्ट यू वर टॉकिंग अबाउट दैट यू नो हाउ इट हेल्प्स इन हैविंग गुड स्किन बिकॉज इट बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। और अगर आप यू भी ऑब्जर्व करें तो जितने भी आप नॉर्थ ईस्ट से जो लोग होते हैं आप देखिए
उनकी स्किन, और कहा जाता है कि उनकी ग्लास स्किन के लिए बहुत फेमस होते हैं वो लोग।
यस, एंड प्रोबेबली यू नेवर नो इट्स वन ऑफ द रीजंस बिकॉज बैम्बू इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। वहां पे बैम्बू पिकल्स भी होते हैं, बैम्बू से डिशेस भी बनती है, सो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट इट हैज न्यूमरस यूजेस, वेदर इट्स हाउसेस, होम्स, एनी बिल्डिंग। टुडे ओवर 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन बैम्बू हाउसेस, एंड अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 70 hectares ऑफ बैम्बू प्रोड्यूसेस इनफ मटेरियल टू बिल्ड 1,000 houses. Can you imagine? That's a whopping number. And if timber was used instead, it could require the felling of trees from an already diminishing forest. So, you know, whereas bamboo grows very quickly, so even if we use bamboo, usko agar hum cut karenge, so it will grow very rapidly. Whereas jo ped kaate jaate hain, timber ka use hota hai, to kai saal lag jaate hain.
Aur humne is baare mein baat bhi ki thi ki kaise baar baar bamboo ko ugane se paryavaran par bhi asar nahi padta hai.
Right, aur acha hi asar पड़ता जी ये कह सकते हैं। एंड वेल इट्स आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, स्पेशली इन रोड रीइन्फोर्समेंट्स इन इंडिया, एंड इट्स आल्सो यूज्ड इन ब्रिजेस बिल्ट इन चाइना। इट्स केपेबल ऑफ सपोर्टिंग ट्रक्स दैट वे एज मच एज 16 tons।
और सायरा इसके अलावा बांस का इस्तेमाल दवाओं में भी हो रहा है। चीन में ब्लैक बैम्बू शूट का इस्तेमाल किडनी डिसीजेस के इलाज के लिए होता है। इसके अलावा जो बांस की जड़ें होती हैं उसका इलाज कैंसर में हो रहा है। और इसके अलावा बांस में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर किसी को सूजन जैसी परेशानी है या दर्द की शिकायत रहती है तो उसमें बांस बहुत फायदेमंद साबित होगा।
एंड वेल जस्ट टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की बात करते हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जो कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ती है दैट इज द टेक्सटाइल एंड गार्मेंट इंडस्ट्री। लेकिन अगर वही कपड़े अगर बैम्बू से बने हो, इट्स द न्यू हेम्प, इट कैन बी मेड इन टू स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फैब्रिक लाइक विच इज अ बिट हार्ड बट नॉनदलेस इट कैन बी रिफाइंड, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट भी काफी कम होता है। एंड बैम्बू फैब्रिक इज ब्रीदेबल, इट्स थर्मल रेगुलेटिंग, इट विक्स मॉइस्चर बेटर देन पॉलिएस्टर परफॉर्मेंस फैब्रिक्स, एंड इट विल रेजिस्ट ओडर एंड इज ऑल्सो अब्सॉर्बेंट एंड फास्ट ड्राइंग, कीपिंग यू ड्रायर एंड मोर कंफर्टेबल देन एनी कॉटन और पॉलिएस्टर फैब्रिक। Beware though that it's also made into rayon in a chemical process that is unsustainable. So rayon, jitne bhi ON se ending wale fabrics hain, that means ki unko jo hai ek chemical process se hi banate hain, nylon, rayon, you know, different. But if we use the hemp from bamboo, it can be very organic as well.
और सायरा एक और इस्तेमाल जो बांस का हम कर सकते हैं, तो ज्वेलरी बांस की बनाई जाती है, और भारत में तो बहुत फेमस हैं जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इनकी टोपियां वगैरह बना के बेचते हैं। इसके अलावा नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग जैसी चीजें बांस से बनाई जाती हैं।
यस, और सब लोग जानते हैं कि एज यू नो द चारकोल फ्रॉम बैम्बू प्लांट ऑफ कोर्स हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एज अ कुकिंग फ्यूल इन चाइना एंड जापान। बैम्बू विनेगर इज एक्सट्रैक्टेड व्हेन मेकिंग चारकोल एंड इज यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। द लिक्विड कंटेन्स 400 डिफरेंट केमिकल कॉम्पाउंड्स एंड कैन बी अप्लाइड फॉर मेनी पर्पसेस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, डिओड्रेंट्स, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर। And well, World Bamboo Day serves as a reminder of the important role that bamboo plays in the advancement of green innovation and sustainability. The environmental effects of bamboo, as you mentioned earlier, that it's called green gold because of its rapid growth that is both sustainable and speedy as well. And compared to most trees, it produces more oxygen. Bamboo is also a crop-resistant plant, and it's crop-resistant to climate change because of its adaptability to a variety of conditions and natural catastrophe resistance. Bamboo is a great crop for areas that are vulnerable to effects of climate change. And if we talk about the initiatives that the government is taking, well, Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, today said that the northeastern part of the country has 55 million tons of bamboo. Ye pure desh ki 66% output hai, wo northeast se aata hai. And in a social media post, Mr. Puri highlighted that the National Bamboo Mission that was launched by Prime Minister Narendra Modi has boosted farmer incomes, combat climate change, and has also promoted bioethanol. He noted that India's first 2G ethanol biorefinery in Assam, the Numaligarh refinery, has been set up to turn bamboo into ethanol, supporting local farmers and the economy. So that was today's Dateline India on World Bamboo Day.
और अब सायरा समय है कि हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलें और उनसे जानकारी लें।
यस, तो जो परिक्रमा नाम है हमारे शो का, तो वो यही सेगमेंट जस्टिफाई करता है, उसका नाम इज इंटर। एंड इस सिलसिले में अपने इस परिक्रमा के सफर में सबसे पहले वी आर हेडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ओनली। वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी इन असम, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रन गोलापाड़ा कॉलेज हैज बिकम द फर्स्ट कॉलेज टू हैव अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन द स्टेट। Ronoj Pegu, the Minister of Education, Government of Assam, inaugurated the station 89.6 FM. More details from our correspondent.
Radio Gualpara 89.6 FM is the first community radio station by any college in Assam. According to Gualpara College, this CRS will serve the community with information, education and entertainment apart from providing a platform for the young talents to shine. This CRS has started radio classes on the subjects of science, languages, life skills, talk shows, songs and information on health. Last year, Akashvani also started a 30-minute local program named Gualpara Waves from Gualpara 1 kilowatt FM transmitter. This is a unique initiative from Akashvani to promote local culture, development programs and other diverse needs and interests of the local community. Akashvani plans to increase the duration of the broadcast times according to the interests and demands of the local community. Aminul Haq Juddar, Akashvani News, Guwahati.
और अब आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो तिथि भोजन कार्यक्रम को लागू करने में आगे रहा है। अगस्त के मध्य तक इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1089 स्कूलों के करीब 1,46,000 छात्रों को कवर किया गया। ये कार्यक्रम 15 अप्रैल को पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष दिवस के अवसर पर शुरू हुआ था और उस दिन 32,368 स्कूलों में तिथि भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें 38,03,172 छात्रों ने खाने का आनंद लिया।
एंड वेल, जब बंगालियों की बात आती है तो खाने का जिक्र ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता। एंड मोर डिटेल्स आर कमिंग इन फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट सुष्मिता मोंडल।
According to the State Education Department, the Tithi Bhojan program has covered schools in 13 districts, including the GTA area. East Midnapur leads with 10,787 students in 831 schools, the highest in the state, while East Vardhaman is second with 10,496 students in 81 schools. On the launch day, Murshidabad recorded the most beneficiaries with 5,564 4 schools and 762,677 students. Schools in Bankura, Hooghly, Kalimpong, Nodia, West Burdwan, East Midnapur, GTA, Howrah, Malda, Murshidabad, East Burdwan, Siliguri and North Dinajpur have witnessed good coverage of Tithi Bhojan. KMC plants over 1 lakh saplings since Amphan devastation. We are hopeful that with the overwhelming response, those districts which have not yet hosted Tithi Bhojan will catch up soon, said a senior official of the state school education department. Tithi Bhojan is a community participation program where food is provided to school students on special occasions such as festivals, anniversaries, birthdays, marriages and days of national importance, etc. Members of the community provide nutritious and healthy food to the children as an additional food item or full meal on such special occasions and festivals. This is completely voluntary and the people in the community contribute either a full meal or contribute food items in the form of sweets, namkins, fruits or sprouts, etc. as an additional item. Tithi Bhojan is not a substitute to midday meal and supplements or complements midday meal. The center has its guidelines on Tithi Bhojan, which is being followed during implementation. Sushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
And now from the eastern part of the country, we now head towards down south. In Tiruchirappalli, the central district of Tamil Nadu, Restaurant on Coach is coming up. The preliminary works for establishing the Restaurant on Coach within the Rail Museum, situated close to the Tiruchi Railway Junction, commenced late last year with a broad gauge track on a concrete flooring. And very interesting news, which the details our correspondent has.
The railway department is initiating a lot of activities to amuse and attract the people. One such step is Restaurant on Coach at Rail Museum. To carry over this novel idea, an old and unused broad gauge coach was brought from the Golden Rock Railway Workshop Trichy to convert it into a restaurant. A private agency was awarded the contract to refurbish the coach and modify it as a restaurant and operate it for a period of 5 years. Nearly 85% of the project works have been completed so far, with pipeline and floor tiles to be laid. Interior works inside the coach were currently under progress to give it a complete makeover. The revamped coach will be equipped with furniture and other appliances. Once refurbished, the new look coach would have a dining space with around 100 to 120 seating capacity and a separate space for a kitchen inside to dish out a slew of food items to the visitors. The revamping works are planned to be completed in 6 weeks. The licensee would pay the license fee to the Trichy Railway Division per annum for a period of 5 years under the contract. The Restaurant on Coach is an initiative of the railways to generate non-fare revenue and offer a different dining experience for the visitors inside the air-conditioned revamped coach. No doubt, Trichy district people will be attracted towards this restaurant as it lies in the central and busy part of the city. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
Today is the birth anniversary of a great freedom fighter and revolutionary, Madan Lal Dhingra. He was born on 18 September 1883 in Amritsar. देश की खातिर जीना है देश की खातिर मरना है वंदे मातरम.
In July 1999, Dhingra assassinated Sir William Curzon Wiley, an advisor to the Secretary of State of India, at a gathering in the Imperial Institute, London. Dhingra refused to take service of government's attorney, saying he did not recognize the legitimacy of court to try him.
He declared that his act was a humble revenge for the inhuman hangings and transportation of patriotic Indians. While he was being removed from the court, he said to the Chief Justice, "Thank you, my lord, I don't care. I am proud to have the honor of laying down my life for the cause of my motherland." He was sentenced to death and died on the gallows at the Pentonville Prison, London, on August 17, 1909, at the age of 26.
क्या करना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, वंदे मातरम।
मदनलाल ढींगरा वॉज अ सिंबल ऑफ द यूथ ऑफ हिज टाइम, who was strongly opposed to the oppressive measures adopted by the British ruling India with an iron hand. In recognition of Madanlal Dhingra's valor, Annie Besant said, more Madanlals are the need of the time.
Another revolutionary, Virendranath Chattopadhyay, started a monthly magazine in his memory named Madan Talwar from German and printed by Madam Kama. Madanlal Dhingra's name is inscribed in the hearts of every Indian for his heroism and fearlessness.
18 September is the death anniversary of a well-known Indian theosophist and freedom fighter, Bhagwan Das. An educator by profession, Bhagwan Das founded the Kashi Vidyapeeth. He served as a member of the Central Legislature of British India for a long time. Das was born in Varanasi, India on January 12, 1869.
Inspired by a speech of Annie Besant, Das joined the Theosophical Society in 1894. In 1900, he was awarded the Subba Rao Medal by the Theosophical Society in recognition of his contributions to Theosophical literature.
In 1921, Das was sentenced to 1 year imprisonment by the British for association with the non-cooperation movement, but was released after only 5 weeks on a motion of the government. For several years, Das served on the All India Congress Committee and was elected to the Legislative Assembly in Uttar Pradesh in 1934.
In 1955, Dr. Bhagwan Das was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award, for his achievements in literature and education. Bhagwan Das bid adieu to this world on September 18, 1958.
Time for business news today. India's equity benchmark indices ended lower ahead of the US Fed policy decision scheduled to be announced later today. However, Sensex in the midday trade touched an all-time high, while Nifty 2 in its early days had hit a fresh record. At close, the Sensex lost 131 points at 82,948 and NSE Nifty was down 41 points at 25,377. Both the indices logged losses of 0.16% each. In the global crude market, Brent crude was trading nearly 1.5% down at $72.64 per barrel, and WTI crude lost more than 1.5% to trade at $70.06 per barrel when reports last came in.
और अब बात खेलों की। भारत की मालविका बंसोड़ ने आज चीन के जांगझू में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के पहले दौर में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता ग्रेगोरिया तुंजुंग को हरा दिया है। मालविका ने पांचवी वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई खिलाड़ी को 26-24, 21-19 से पराजित किया। अरब वक्त है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज ही पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं अभिनेता असित सेन को। ये हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग कहे जाते थे। इन्होंने 4 दशक तक चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। इन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इसके अलावा असित सेन ने बांग्ला फिल्म अमानुष और आनंद आश्रम जैसी फिल्मों में भी काम किया। आइए आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म का एक डायलॉग।
क्या देख रहे हो? तुम समझते हो कि मैं दौड़ नहीं सकता? जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं ही दौड़ता हूँ, समझे?
आज जयंती है काका हाथरसी की। ये प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि थे। इनकी रचनाएं समाज में व्याप्त दोषों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुशासन की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। अपनी रचनाओं को ये फुलझड़ियां बुलाया करते थे। काका के प्रहसन, लूट नीति, मंथन करी, खिलखिलाहट इनकी मुख्य रचनाएं हैं। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें 1985 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता उन्हीं के शब्दों में।
दो आदमी बात कर रहे हैं यार, आदमी चांद पर पहुंच गया। चंद अमल से कह रहे ठाकुर आलमगीर, पहुंच गए वे चांद पर, मार लिया क्या तीर, मार लिया क्या तीर, लौट पृथ्वी पर आए, लौट पृथ्वी पर आए, हुए करोड़ों खर्च कंकड़ी मिट्टी लाए, इनसे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, बिना चांद पड़ते ही हजम कर जाता चंदा।
Today we are also remembering a very noted writer and academic on his birth anniversary, Govind Rai Hammana Naik. He was a professor of Kannada at University of Mysore and was awarded the Central Sahitya Akademi Award for his work Sanskrit Chintan in 2014. And apart from Sanskrit Chintan, there are many other works, Nirpeksh, Samkalin, Nijadani, Bendra Nadu Nadu Olavu, Maulya Marga, Matte Matte Pampa and Stithi Prajnye. Krithi Sakshi is also one of his noted works. And apart from the Central Sahitya Akademi Award, he also won the Karnataka Sahitya Akademi Award and the Kampa Award.
आज ही जयंती है शिवाजी सावंत की। ये साहित्यकार थे, इन्होंने लेखन की शुरुआत कविता से की। 27 साल की उम्र में इनका पहला मराठी उपन्यास मृत्युंजय का प्रकाशन हुआ। ये उपन्यास इनकी लोकप्रियता का प्रतिमान बना। इसका अनुवाद अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में हुआ। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके इसी उपन्यास पर आधारित धारावाहिक का एक अंश।
आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप चौंक गए होंगे कि जो काल के मुख में जा चुके हैं वो कैसे बोलने लगे। लेकिन जब जीवित मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं तब मृतकों को जीवित होकर बोलना पड़ता है। कहानियां सदैव ही बड़ी रुचि से सुनने वाला और दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता से कथा भूल जाने वाला यह पागल संसार मेरी कथा को महत्व देगा। मेरी कथा में हास्य नहीं है, विनोद भी नहीं, नहीं नर्तकियों के नृत्य और स्त्री पुरुष के आवेगपूर्ण आलिंगन।
साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए शिवाजी सावंत को गुजरात सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और आज ही जयंती है श्रीकांत वर्मा की। ये हिंदी साहित्य में कथाकार, गीतकार और एक समीक्षक के रूप में खास तौर पर जाने जाते हैं।
एंड इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स, भटका मेघ दैट केम आउट इन 1957, माया दर्पण, दिनारंभ, संवाद, घर, अपोलो का रथ वर सम ऑफ हिज प्रोमिनेंट वर्क्स।
और श्रीकांत वर्मा को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार आदि शामिल हैं।
Today is also the birthday of a very fine actress of Indian cinema. We are talking about Shabana Azmi, an actress of film, television and theatre. Her career in the Hindi film industry has spanned over 160 films, mostly within independent and new realist parallel cinema, though her work extended to mainstream films as well as a number of international projects. One of India's most acclaimed actresses, Shabana Azmi is known for her portrayals of distinctive, often unconventional female characters across several genres. She has won a record 5 National Film Awards for Best Actress, in addition to 6 Filmfare Awards and several international accolades. The Government of India honored her with the Padma Shri in 1998 and Padma Bhushan in 2012. And अगर उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म थी डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर मासूम
जी,
उसका बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना है दैट इज यू नो स्क्रीन्ड ऑन हर। लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।